ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्साहूणम् ईसो पंच नमो यारो सव पाव पणासनो मंगलान च सवेसि पढ़मं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरहंत मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवल पन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलि पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलि पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली नमो अरहंताणं नमो अरहंताणम के विस्तार में दिन पर दिन निकलते चले गए। 2 माह से अधिक काल संभवतः पार हो चुका है। पूर्व सत्र में जो एक पर्यनुयोग का प्रत्युत्तर था, एक पृच्छना का समाधान था, उस पर कुछ प्रश्न आए हैं। उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ये सारे समाधान नमो अरहंताणम में ही हो जाए तो बड़ा आनंद आएगा। फिर नमो सिद्धाणम आदि में और अपन प्रगतिशील होंगे। जब कभी हो अभी तो हमारी प्रस्थान वेला आ चुकी है। तो प्रश्न ये है देवता पूजन विषयक पांच अभिप्राय समझ में आ गए। कोई मिथ्यात्व के अभिप्राय से करता है, कोई वरदान प्राप्ति की आकांक्षा से करता है, कोई वात्सल्य से करता है, कोई संकट निवारण के लिए करता है, और कोई भगवान के वैभव के रूप में उनको मानकर उनकी आराधना करता है। यद्यपि वैभव को भगवान में सम्मिलित करके ही भगवान की आराधना होती है और उसी में सब कुछ आ जाता है, तदपि क्वचित कदाचित वैभव को पृथक करके भी आराधना आगम बाधित नहीं है। ये बात एक महत्व की बात थी जो अपन ने पूर्व सत्र में जानी, जिसे आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान के पैर रखने के स्थान को भी, पाद पीठ को, पैरों की चौकी को भी देवों द्वारा अर्चित बतलाया था। और अपन तो जानते ही हैं कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, जिसको अपन जिन वाणी कहते हैं, वो भले ही गणधरों द्वारा द्वादशांग में वर्गीकृत कर दी गई हो, लेकिन तब भी आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने एक बड़ी विशेष जानकारी दी है। वो अपने ध्यान में रखने योग्य है। गोमटसार ग्रंथ में आचार्य कहते हैं, पण्णवनिज्जा भावा अनंत भागोद्वण अभिलपाणम पण्णवनिज्जाणम पुण अनंत भागो सुदनिबद्धो। इसका भावार्थ बताते हैं, भगवान ने अपने ज्ञान द्वारा जितना कुछ जाना उसका अनंतवा भाग उन्होंने अपनी वाणी द्वारा प्रकट किया, और भगवान ने जितना कुछ अपनी वाणी द्वारा प्रकट किया उसका अनंतवा भाग गणधरों ने द्वादशांग में निबद्ध किया। अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है, अगर इस ओर से अपन विचार करें कि द्वादशांग में गणधरों ने जो कुछ समाविष्ट किया, दिव्य ध्वनि में तो बहुत कुछ था, लेकिन उसमें से भी द्वादशांग में जो कुछ गणधरों ने समाविष्ट किया उससे अनंत गुणित विषय भगवान की दिव्य ध्वनि में था। और भगवान की दिव्य ध्वनि में जो कुछ था उससे अनंत गुणित विषय भगवान के केवल ज्ञान में था। द्वादशांग भी पूज्य है, और द्वादशांग से अनंत गुणित जो भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि है वो भी परम पूज्य है। इसमें संदेह कैसा? और दिव्य ध्वनि अपने आप में एक प्रातिहार्य है, उसको भगवान से पृथक करके भी पूजा जाता है। यद्यपि भगवान की पूजा में उनके सारे गुण भी समाविष्ट हैं, जयमाला जो होती है वो भगवान ने जो दोषों पर विजय प्राप्त की है उसकी एक माला होती है, उसका समूह होता है, अर्थात गुणमाला होती है। जयमाला का अर्थ क्या है? गुणमाला, माने भगवान के या अपने आराध्य के गुणगान करने का नाम जयमाला है। जयमाला अपना दुखड़ा रोने के लिए नहीं है, और जिनेंद्र भगवान की पूजा भी, जब अपन पूजा पढ़ते हैं तो पूजा की जो पंक्तियां होती हैं वो पंक्तियां ऐसी पंक्तियां हों जो अपने को भगवान के प्रति भक्ति से भर दे। वो पंक्तियां ज्ञान प्रधान न हो, अर्थात आध्यात्मिक न हो, उसमें अध्यात्म सिद्धांत आदि को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन पंक्तियों में केवल भगवान का ही वर्णन हो, तब अपने भीतर से भक्ति की धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि भगवान का वर्णन सुनकर के अपना अंतःकरण उनके प्रति सम्मान से भर जाता है। और पूजा की पंक्तियों में यदि अध्यात्म का समावेश होता है तो फिर अपनी आत्मा के प्रति बहुमान उत्पन्न होने लग जाता है, सम्मान उत्पन्न होने लग जाता है। बहुमान शब्द तो नहीं कह सकते, सम्मान कहेंगे। तो अपनी आत्मा का सम्मान उत्पन्न होने लग जाता है। देखिए, ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की आराधना है। आत्माराधना अध्यात्म प्रधान है और परमात्माराधना भक्ति प्रधान है। भक्ति में अध्यात्म और अध्यात्म में भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि अध्यात्म ध्यानात्मक होता है, अध्यात्मक बोलने की वस्तु नहीं है। अध्यात्म जो होता है ना, उसकी परिभाषा स्याद्वाद अधिकार में समय पाहुड़ ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति के अंदर जयसेन आचार्य महाराज ने दी है। अध्यात्म की परिभाषा क्या है? परद्रव्य निरवलंबत्वेन निज शुद्धात्मनि विशुद्ध गुणाधार भूते नुष्ठान अध्यात्मम। आत्मा से भिन्न जितने भी अन्य पदार्थ हैं, अब वो जो अन्य पदार्थ हैं वो परमेष्ठी भी हो सकते हैं, उन सब का आलंबन छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में आत्मा के स्वरूप को देखो तो सिद्ध समान है, रूप को देखो तो एक कर्माधीन संसारी प्राणी की दशा है। रूप को स्वरूप समझ लेना मिथ्यात्व है इस प्रसंग में। और जिन्होंने अपने स्वरूप को लक्षित करके अपने रूप और स्वरूप को एक बना लिया, वे सिद्ध परमेष्ठी अलौकिक हैं, धन्य हैं और अद्वितीय हैं। तो कितनी बड़ी बात हो गई है कि परमेष्ठी तक का आलंबन छोड़ दिया और अपने शुद्ध स्वरूप में, कैसा है अपना शुद्ध स्वरूप? विशुद्ध गुणाधार भूते, जो गुण सिद्ध परमात्मा में है उनका आधार है अपना शुद्ध स्वरूप। उस स्वरूप से ही वो गुण प्रकट होने वाले हैं, उसमें अनुष्ठान करना अर्थात आत्म ध्यान करना, अथवा ये कहें शुद्धोपयोग में चले जाना अध्यात्म है। फिर अध्यात्म चर्चा अलग वस्तु है, वो इसके बारे में चर्चा है, वो ये नहीं है। वो अध्यात्म को जानना और अध्यात्म के बारे में जानना दोनों अलग वस्तु है। अध्यात्म को जानने वाले वही हैं जो अध्यात्म में गए हैं। अध्यात्म के बारे में जानने वाले वो हैं जिन्होंने अध्यात्म को पढ़ा है और सुना है और समझा है। जैसे अग्नि जलाती है, इसको जानने वाले सभी लोग हैं, नहीं है? नहीं है। जो जले हैं वो उसको जानने वाले हैं, जो नहीं जले हैं उनको जानकारी है। अग्नि जलाती है, इस विषयक जानकारी सबके पास है, लेकिन अग्नि जलाती है इसको जानने वाला कौन है? जो जला है। बस यही स्थिति है। तो जो वस्तुतः अध्यात्म से अपरिचित है, वो परमात्मा की आराधना में अध्यात्म का समावेश करने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा की आराधना भक्ति प्रधान ही हो सकती है, क्योंकि परमात्मा आत्मद्रव्य नहीं है, आत्मा से भिन्न द्रव्य है। परमात्मा को द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से जानने से आत्मा का ज्ञान अवश्य होता है। ये ज्ञान का क्षेत्र अलग है, भक्ति का क्षेत्र अलग है। तो जब अपन पूजा करने के लिए गए हैं, तो पूजा करने गए हैं तो अपन ने पूज्य भगवान को माना है, और यदि भगवान को पूज्य माना है तो फिर पूजा की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। पूज्य का ही गुणगान करना होगा आपको। यदि आप कहेंगे भव आताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है, उज्जवल हूं कुंद धवल हूं प्रभु पर से न लगा हूं किंचित भी, तो ये आत्मा की स्तुति हो गई, परमात्मा की नहीं। और आत्म प्रशंसा को व्यवहार में नीच गोत्र का कारण कहा गया है। इसलिए आप अपनी आत्मा की प्रशंसा परमात्मा के सामने नहीं कर सकते। आप अपनी आत्मा के गुणों का ध्यान करो बैठ करके। ध्यानस्थ होकर के करो ना आत्मा की आराधना। ध्यान लगता नहीं और परमात्मा के सामने जाकर आत्मा की आराधना कर रहे हैं, इससे बड़ी अभिनय क्या हो सकती है? सामने त्रिलोकीनाथ परमात्मा हो और कोई अपनी प्रशंसा करे, तो ये सभ्यता से भी विरुद्ध है, शिष्टाचार से भी प्रतिकूल है। आचार्य शांति सागर महाराज ने 9938 उपवास किए, उनके पास जाकर के अगर कोई कहे कि आचार्य श्री मैंने 3 उपवास किए लगातार, अरे वाह भाई वाह, 3 उपवास कर लिए लगातार, आप 3 उपवास करके फूल गए और वो हजारों उपवास करके विनम्र बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो पूजा में इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि अपन जिन आराध्य को पूज रहे हैं उनका स्थान सर्वोपरि है, और जब तक अपन सबसे छोटे नहीं बन जाएंगे तब तक भक्ति का आनंद नहीं आएगा। आप छोटे से छोटा बन जाइए और भक्ति करिए। ये जो व्यवहार क्रिया होती है, जो आराध्य और आराधक का जो भाव होता है, ये द्वैत भाव है, और द्वैत भाव कभी भी अध्यात्म नहीं हो सकता। अध्यात्म जो होता है वो अद्वैत होता है। तो फिर कहां आप द्वैत में अद्वैत को बलात् प्रविष्ट कराने का प्रयत्न कर रहे हैं? ठीक है, अध्यात्म प्रिय है आपको, सुनना बहुत अच्छा लगता है, करने जाओगे तो पसीना आ जाएगा, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। जो क्रिया जहां की जाती है वो क्रिया वहीं करने योग्य है। साधु मंदिर में विराजमान है, आप वहां जाकर आहार दान कर सकते हैं क्या? आहार दान तो चौके में किया जाता है, और चौके में आप स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? स्वाध्याय वहीं करोगे जहां स्वाध्याय के योग्य स्थान है और स्वाध्याय का काल है। इसी प्रकार अध्यात्म की आराधना ध्यान में की जाती है और भगवान की भक्ति पूजा में की जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चर्चा यह है कि अपन भगवान की दिव्य ध्वनि की अलग से भी आराधना करते हैं। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, कितनी भव्य पूजा है ये, कितने सुंदर शब्द हैं। सीधे सीधे अपन भक्ति की धारा में प्रवाहित हो जाते हैं। ज्ञान धारा अध्यात्म में होती है, भक्ति धारा पूजा में होती है। तो अलग अलग भी अपन पूजा करते हैं, भगवान के चरणों की चौकी पूज्य, भगवान का सिंहासन पूज्य, कुछ प्रातिहार्य जो है चेतन है, कुछ अचेतन है, कुछ मिश्र है। तो उन प्रातिहार्यों में कुछ भी कम किए बिना वो जैसे हैं वैसे ही रखते हुए अपन उनकी पूजा कर सकते हैं। और वो पूजा अनर्घ्य पद की प्राप्ति का साधन बनती है। धवला की दशम पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है सम्यक दृष्टियों के विषय में कि जब सम्यक दृष्टि इन क्रियाओं को करता है तब क्या होता है। तो आचार्य कहते हैं जिन पूजा वंदन नमन स्नेहिय बहु कम्मप पदेश निज रोवलंभादोच्च, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने से, जिनेन्द्र भगवान की वंदना करने से, तीन परिक्रमा आदि लगा करके जो दो बार जमीन पर बैठकर ऐसे आवर्त करते हुए जो पूरी विधि के साथ वंदना की जाती है उससे, और नमन सने ही य नमस्कार करने से भी, और य शब्द च का पर्यायवाची होता है, प्राकृत में च का य बनता है, तो च शब्द से चरण स्पर्श आदि भी लिए जाते हैं। इस बात का स्मरण रखिएगा। आज बहुत सारे विद्वान पुरुष चरण स्पर्श का विरोध करते हैं कि भगवान के चरण नहीं छूना चाहिए, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने 1984 में प्रमेय रत्नकाल कम माला जब वो पढ़ा रहे थे, प्रमेय रत्नमाला एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, न्याय का ग्रंथ है, वो जब पढ़ा रहे थे तब वो जब पढ़ाने जाते थे उसके पहले ऐसे बैठ करके वो एक बार उसका आलोडन करते थे। तो हमारी दीक्षा तो नहीं हुई थी, 1984 की बात है, उन्होंने एक श्लोक सुनाया। अब उसमें लिखा हुआ था, वो श्लोक उन्होंने सुनाया काले काले महापुण्यम जायते द्वारिकापुरी, नेमिनाथ भगवान का वर्णन था उसमें, द्वारिकापुरी का भी उल्लेख था, पर मुख्य श्लोक जो था वो हम आपको सुना रहे हैं। पद्मासन समासीन श्याम मूर्तिर दिगंबर दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटि यज्ञ फल प्रदः। पद्मासन में समासीन का अर्थ होता है भली भांति विराजित। कौन? श्याम मूर्ति ही, सांवली छवि वाले, और दिगंबर, कैसी छवि है? दिगंबर, दिशारूपी वस्त्र को धारण करने वाली छवि, जन्मे हुए बालक की छवि, ऐसे नेमिनाथ भगवान हैं। और कैसे हैं वे? दर्शनात् स्पर्शनादेव, दर्शन से और स्पर्शन से ही, मात्र दर्शन और स्पर्शन से ही कोटि यज्ञ फल प्रद, करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाले हैं। और आचार्य वीरसेन स्वामी क्या कह रहे हैं, बहु कम पदेश निज रोवलंबादो च, सम्यक दृष्टि जीव जब ये क्रियाएं करता है तब उसको अनेक कर्म परमाणुओं की, अनेक पापों के पुंजों की निर्जरा प्राप्त होती है। सातिशय पुण्य तो होता ही है, क्योंकि भक्ति का जो धर्मानुराग है वो भक्त को पुण्य से वंचित तो रख ही नहीं सकता, लेकिन वो पापों की निर्जरा भी कराती है भगवान की भक्ति। जिन पूजा वंदन नमन सनेहिय बहु कम्म पदेश निज्जरुवलंबादो च, कितनी सुंदर पंक्ति है, धवला की 10वीं पुस्तक में है। तो उनके जो ये वैभव है इसको धवला की पहली पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज ने सचित अचित और मिश्र मंगल के रूप में स्वीकार किया है। मंगल वो वस्तु होती है जो पापों को गलाए, मम पापम गालयति इति मंगलम, धवला में ये पंक्ति आई है। तो भगवान का जो वैभव है, भगवान तो अपने आप में मंगल है ही, लेकिन ये जो तीन भेद किए हैं, तो भगवान अचित्त थोड़ी है, भगवान तो जीवित है। तो ये जो तीन भेद किए हैं ये किसके सूचक हैं? निसंदेह ये भगवान के वैभव के सूचक हैं। तो भगवान के वैभव भी पापों को गलाते हैं, इसलिए उनकी आराधना भी भगवान के वैभव के रूप में उनकी आराधना। आप ये भूल जाइए कि वो पुद्गल द्रव्य है, वो फलाने गुणस्थान वर्ती जीव द्रव्य है, वो अमुक गति का द्रव्य है, ये सारी बातें एक तरफ रख दीजिए, अपना ज्ञान मत लगाइए। आप सीधा भक्ति से देखिए, वो भगवान का वैभव है, और भगवान के वैभव की जब आप आराधना करते हैं अपृथक रूप से और पृथक रूप से भी, दोनों प्रकार के अपने को दृष्टांत मिल रहे हैं। तो वे गुणश्रेणी निर्जरा में कारणभूत होते हुए सातिशय पुण्य में भी सहायक होते हैं। तो मैं प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न भेजा है उसमें यह है कि आपने देवता पूजन के विषय में जो पांच अभिप्राय बताए वो समझ में आ गए, हमने अनजाने में देवों के प्रति जो भी बर्ताव किया, जो उनके प्रति सोच रखी, उसका दुख हो रहा है, परंतु आज भी हमारी विवशता है कि हम आगे भी यानी भविष्य में भी इनका सम्मान इनकी पूजा आदि नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देव गुरु की साक्षी में नमोकार मंत्र पढ़कर कुदेवों को न पूजने का नियम लिया हुआ है, और कभी कोई उनको अर्घ भी प्रदान करे तो वहां खड़े रहने का हमने त्याग किया है। माने हमारे सामने अगर कोई अर्घ प्रदान कर रहा है तो हम वहां खड़े नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, पर इससे उनकी अभिनय हो रही है ऐसा हमें आज अंग्रेजी में एक शब्द लिख दिया फील हो रहा है। आजकल की ऐसी खिचड़ी भाषा है, लोग हिंदी में इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं, अभी हम भी मिक्स शब्द बोल रहे हैं, वो अंग्रेजी का बोल रहे हैं, तो उसको हिंग्लिश भी कहते हैं। हम क्या करें, बहुत कंफ्यूजन है मन में। तो इसमें से कुछ कंफ्यूजन तो आपका, अगर सावधानी आप सावधानी पूर्वक आपने सब कुछ सुना होगा तो दूर हो चुका होगा। पहला कंफ्यूजन तो जो आप कह रहे हैं कुदेव, आपने क्या त्याग किया है, कुदेव की आराधना का त्याग किया ना, तो पहले ये बताओ ये कुदेव है क्या। अपन एक बार ये विषय ले चुके हैं कि ये कुदेव इसलिए नहीं है क्योंकि कुदेव अनायतन में आते हैं और ये आयतन है। आयतन अनायतन नहीं हो सकता क्योंकि आयतन शब्द से ही अनायतन शब्द बनता है नए समास करने से व्याकरण में। न आयतनानि इति अनायतनानि, जो आयतन नहीं होते उनको अनायतन कहते हैं। तो पहला विषय तो ये हो गया कि इनको कुदेव समझना ही सबसे बड़ी भूल है। ये कुदेव नहीं है। कुदेव कौन है? तो देवता शब्द का अर्थ हमने बतलाया था कि देवता का अर्थ परमात्मा के रूप में जिनकी आराधना की जा रही है वो यदि 18 दोषों से युक्त हैं तो उनको कुदेव कहा जाता है। और ये कौन है? ये देवगति के देव हैं। देवगति के देवों को कुदेव नहीं कह रहे हैं इस सम्यक दर्शन के प्रकरण में। ध्यान रखना इस बात का, सम्यक दर्शन के प्रकरण में देवगति के देवों को कुदेव नहीं कहा जा रहा है। यहां पर यह कह रहे हैं कि जो मिथ्या देव है, अर्थात जो परमात्मा के स्थान पर विराजमान किए गए हैं अज्ञानियों के द्वारा, लेकिन उनमें परमात्मा का स्वरूप नहीं है, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित परमात्मा का स्वरूप उनमें विद्यमान नहीं है, उनको कुदेव कहा गया है। इसलिए यह विषय तो यहीं समाप्त हो जाता है कि आपको कुदेवों की पूजा का दोष तो लगेगा ही नहीं क्योंकि वे कुदेव नहीं है। अब दूसरी बात कि हम देवगुरु की साक्षी में नमोकार मंत्र पढ़कर कुदेवों को न पूजने का नियम ले चुके हैं तो उसका तो समाधान हो गया, और जहां अर्घ भी दिया जा रहा हो वहां हम खड़े नहीं रहते तो ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अब एक प्रश्न ये आता है कि आपने नियम लेते समय इनको कुदेव मान करके नियम लिया था तो अब आप क्या करेंगे, ये आप जानना चाहते हैं। तो इसका समाधान ये है कि अब आप जान चुके हैं कि ये कुदेव नहीं है, तो आपने जिस अभिप्राय से नियम लिया था वो अभिप्राय तो खारिज हो गया, समाप्त हो गया। आप जिनको कुदेव मान रहे थे वो कुदेव नहीं निकले, तो अब क्या करोगे? जैसे एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहा है, बाद में उसको पता चलता है कि ये तो मेरा सगा भाई है, तो अब वो मुकदमा दायर करेगा क्या? और दोनों के हृदय परिवर्तित हो जा रहे हैं तो अब क्या होगा? अब वो सारी रंजिश भुला करके गले मिल जाएंगे, ऐसा होगा कि नहीं? अब आप अपवादों में दिमाग मत दौड़ाना जो सीधा रास्ता है उस पर विचार करो, बिल्कुल सब बदल जाता है। कई वस्तुओं का त्याग हमने भी अभक्ष समझकर पूर्व काल में किया था, और बाद में शास्त्रों की गहराइयों से जो बात जानने में आई, पता चला कि कुछ वस्तुएं उनमें अभक्ष नहीं थी, तो हमने अपने संकल्प में संशोधन किया कि अभक्ष मानकर उनको त्यागा था, अर्थात हमने अभक्ष का त्याग किया था। आगम इसको अभक्ष नहीं मानता तो हम आगम को मानेंगे। एक बार हमसे इन्हीं शासन देवताओं के विषय में एक प्रश्न पूछा गया हस्तिनापुर में। मेरठ के एक सज्जन ने प्रश्न पूछा था, भरत कुमार जी ने, कि आपने पहले तो कहा था कि एक थाली में रखकर भगवान की और शासन देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, छेड़ाला के उपदेश में आपने कहा था, और आपने आचार्यश्री का उद्धरण दिया था कि आचार्यश्री ने शेंदुरजना घाट में ये कथन किया है कि दोनों को एक थाली में रख करके उनका अभिषेक नहीं करना चाहिए, और अभी आप कह रहे हैं कि कोई आपत्ति नहीं है कर ले तो। क्योंकि आचार्य शांति सागर महाराज जी की सीढ़ी में आचार्य श्री के सामने एक थाली में भगवान भी विराजमान है, उसी थाली में पद्मावती देवी भी विराजमान है, दोनों का अभिषेक चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये तो हमारी समझ में नहीं आता, आप तो अपनी बात के पक्के नहीं है। ये प्रश्न था उनका। सुनो सुनो सुनो, वो जैन शासन देवता नहीं थे। नदी में जो सिराए थे वो जैन शासन देवता नहीं थे। और अभी आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा जीवंत है, उनसे जाकर के आप बात कर लेना और स्पष्ट हो जाएगा। अभी आप पूरी बात तो सुनिए ना, अभी हम बता रहे हैं आपको। सुंदर प्रश्न था आपका, तो वो जैन शासन देवता नहीं थे। अब दूसरी बात, हमने उनको उत्तर दिया कि देखो भले ही हम सत्यव्रती हों लेकिन हम अपनी बात के पक्के नहीं हैं। अपनी बात के पक्के न होते हुए भी हम आगम के पक्के हैं। मान लो हमारी कोई बात आगम से विरुद्ध जा रही, आज हमारे पास जितना ज्ञान है उसमें कोई बात हमारी आगम से विपरीत हो सकती है? नहीं हो सकती क्या? अवश्य हो सकती है, क्योंकि हम कोई श्रुत केवली अथवा केवली नहीं है। तो क्या हम उस गलत बात को अभी आपको समझा रहे हैं उस पर हम अड़े रहेंगे क्या, अगर आगम से विरुद्ध निकली तो? कदापि नहीं। हम आगम की बात को स्वीकार करके अपनी उस पूर्व धारणा का तत्काल परित्याग कर देंगे। अगर हम तत्काल परित्याग नहीं करेंगे तो हमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा। ऐसा अनेक ग्रंथों में उल्लेख है। गोमट सार की 27वीं 28वीं गाथा में भी यही बात कही गई है, जीवकांड में। तो बात यह थी कि अगर आप उस वहां पर जो आचार्य शांति सागर महाराज जी के सामने घटना हो रही है, या तो फिर आप आचार्य शांति सागर महाराज जी को अज्ञानी मान लो कि उन्होंने ऐसी अनर्थकारी घटना अपनी आंखों के सामने होने दी और जनता को सचेत नहीं किया कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, इसमें घोर मिथ्यात्व का दोष लगेगा। उन्हीं शांति सागर महाराज जी को, जिन्होंने हमारे आचार्य विद्यासागर गुरु जी हैं, दीक्षा शिक्षा गुरु, उन्होंने अपने एक उद्बोधन में कहा था कि आचार्य महाराज ने कहा था, शांति सागर महाराज जी ने, देखिए वो शब्द उनके हम आपके सामने रख रहे हैं, उनके चरणों पर जब कोई विद्वान पुष्प चढ़ाने लगे तो आचार्य जी ने कहा कि आप विद्वान होकर के ये क्या कर रहे हो। तब उन्होंने कहा क्यों महाराज जी, भगवान के चरणों पर तो चढ़ाते हैं। तब आचार्य जी ने, शांति सागर महाराज जी ने जो कहा था वो ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य विद्यासागर महाराज जी को सुनाया था, और आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अपने एक उद्बोधन में ये प्रसंग प्रस्तुत किया था। आचार्य जी ने कहा कि प्रतिमा अचित्य है, ये शब्द आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने बोले, हमने कैसेट में खुद सुने हैं कारंजा में, वो कहां की कैसेट थी वो हम नहीं जानते, लेकिन हमने खुद सुने आचार्य श्री के, और आचार्य श्री के आवाज को पहचानने में हमें भ्रम नहीं हो सकता। तो आचार्य श्री के मुंह से ही निकले हुए शब्द है कि प्रतिमा अचित्य है और हमारा शरीर सचित्य है। हमारे रक्त की ऊष्मा से यदि वो ताजा पुष्प होगा जिसमें वनस्पति कायिक जीव के प्रदेश होंगे, ये थोड़ा सा हम एलैबोरेट कर रहे हैं उस बात को, तो उस जीव को बाधा पहुंचेगी। विद्वान को आचार्य श्री के ज्ञान पर गर्व हुआ कि आचार्य श्री कितने विवेकवान हैं। तो जो आचार्य विद्वानों को भी टोक सकते थे, वो वहां पर जब थाली में दोनों का अभिषेक एक साथ हो रहा है तब चुप बैठ सकते थे अगर वो आगम विरुद्ध होता तो? विचार करने की बात है। अब वो आगम सम्मत है या नहीं, इसका समाधान निकालना, यहां पर नीचे वही प्रश्न लिखा है। इसमें प्रश्न में तो ये है कि अभिषेक करना कैसे सही है, तो इसका उत्तर है कि अभिषेक एक आदर सूचक क्रिया है। अब वो आदर सूचक क्रिया ऐसी है कि कई बार ससुर के भी पैर धुलाए जाते, लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत बता रहे हैं हम आपको, कई बार गुरुओं के भी चरणों को पखारा जाता है, लौकिक गुरुओं के। कई बार जब जब राजा का राज्याभिषेक होता है तब राजा को चंदन का उबटन लगा करके अभिषिक्त किया जाता है। तो इसी प्रकार ये एक सम्मान सूचक क्रिया मात्र है, ये कोई जन्माभिषेक नहीं है उनका। उनका कहां से हो जाएगा जन्माभिषेक, उनके तो कल्याणक भी नहीं होते, कल्याणक तो तीर्थंकर भगवान के होते हैं। तो ये एक सम्मान सूचक है प्रवृत्ति। लेकिन जब भगवान के साथ उनका वो हो रहा है तो कुछ मूर्तियां तो ऐसी होती है जिसमें भगवान के साथ उनका पूरा वैभव है, उसको आप अलग कर ही नहीं सकते। तो वहां तो सबका अभिषेक हो रहा है, और अगर एक थाल में भगवान भी रखे हुए हैं और देवी भी रखी हुई है तो फिर वहां पर यही अभिप्राय ग्रहण करना होता है कि ये भगवान के वैभव के रूप में भगवान के साथ आराधित है। ये अलग से पद्मावती देवी अथवा और किसी के रूप में आराधना को प्राप्त नहीं है, ये भगवान के वैभव के रूप में है। और एक प्रश्न और आता है इसमें कि यदि ऐसा करते हैं तो जो भगवान का पवित्र गंधोदक है उसमें उनके अभिषेक का द्रव भी मिल जाएगा, तो फिर गंधोदक में वो शक्ति रह जाएगी क्या? गंधोदक दूषित नहीं होगा क्या? ये प्रश्न है। तो इसका समाधान ये है, तत्वार्थ सूत्र के पांचवें अध्याय में लिखा है, बंधे दिकौ पारिणामी कौ उच्च। बंध या मिश्रण की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक जैन सिद्धांत है, वो सिद्धांत ये कहता है कि जो अधिक संपत्ति अधिक शक्ति संपन्न होता है, अधिक गुण संपन्न होता है, वो कम गुण वालों को अपने रूप परिणमा लेता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास शुद्ध घी है और शुद्ध घी में माने मान लो एक छोटी सी डब्बी भर करके शुद्ध घी है आपके पास, उसमें अगर आप एक चम्मच वनस्पति घी मिला दोगे और आलोड़ित कर दोगे उसको, तो फिर जो शुद्ध घी है वो चूंकि मात्रा में और शक्ति में अधिक है इसलिए वो उसको अपने रूप परिणमा लेगा। टेस्ट करके आपको पहचानना मुश्किल लगेगा कि इसमें कुछ और है। इसी प्रकार जो त्रिलोकीनाथ का गंधोदक है उसकी शक्ति का कोई अनुमान लगा सकता है? उसके विषय में आप रोज एक श्लोक पढ़ते हो, निर्मलम निर्मलीकरणम, वो निर्मल है। और निर्मलीकरण शब्द जो बना है व्याकरण में कहते हैं कि जो निर्मल नहीं है उसको निर्मल कर डाले, उसको निर्मलीकरण कहते हैं। अनिर्मलम निर्मलम यथा स्यात् करोति इति निर्मलीकरणम। तो वो गंधोदक दूषित कैसे हो सकता है? जब भगवान अधिक शक्ति संपन्न है तो फिर वो दूषित हो ही नहीं सकता। अब इसमें एक प्रश्न जो महत्व का है वो ये है कि ये जो शासन देव देवता हैं उनकी आराधना के जो पद है यानी उनका जो सत्कार हो रहा है उसमें जो आप शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उस शब्दावली में बस इतना ध्यान रखना होगा कि उनमें जो गुण है उन्हीं गुणों को लेकर आप शब्दावली का प्रयोग करें, उनमें जो गुण नहीं है भगवान के गुणों का उनमें समावेश न करें। इतने से सारा विषय व्यवस्थित हो जाता है ऐसा हमें लग रहा है। और अब कुछ बाकी रह गया क्या? अब तो कुछ नहीं बचा। यानी अब देखिए दोनों आचार्य अपने अपने स्थान पर सही थे कि आप देवी की आराधना अगर वात्सल्य वाली आराधना कर रहे हैं तो भगवान के साथ रख करके मत करो, और भगवान का वैभव मान करके उनको साथ में रखे हो तो कोई आपत्ति नहीं है। भगवान के साथ उनका वैभव रखने में किसी को कोई अड़चन नहीं है। इस तरह से ये बात बनती है। और उसमें भी एक बात का ध्यान रखा जाता है कि धारा करते समय अगर भगवान और वैभव पृथक पृथक है पर एक थाल में ही है, तो पहले भगवान पर धारा करोगे और अंत में वैभव पर धारा करोगे, ऐसा क्रम रहता है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर नमो अरहंताणम पर इतने दिनों तक ये व्याख्यान माला चली है, फिर पता नहीं कहां मिलना होगा अपना, क्योंकि अब हमारे प्रस्थान की बेला निकट आ गई। अब कह रहे हैं कि नागपुर वगैरह में कोरोना के फिर प्रकोप बढ़ गया है, हम महाराष्ट्र की तरफ प्रस्थान का विचार बना रहे हैं, तो देखते हैं जैसी स्थिति बनती है। जी, हवा फैल रही है, अच्छा हवा फैल रही तो पंखा बंद करो भाई। देख लेते हैं फिर, ठीक है ना। तो अब इतने दिनों में जो भी बोलचाल में या जो भी वर्णन में अगर हम कहीं आगम से स्खलित हुए हैं, अगर कहीं कोई अभिनय की भाषा हमारे मुख से निकली हो, तो सरस्वती माता और सारे गुरुजन हमें क्षमा प्रदान करें। और अगर कोई हमारे ज्ञान में कोई चूक रह गई हो और आपकी जानकारी में कोई ऐसी बात हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जैनम जयतु शासनम। परमार्थ देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। कायोत्सव।